एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथसार में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसे उपन्यास की बात कर रहे हैं जिसने अंग्रेजी साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है।
हाँ, और सिर्फ साहित्य ही नहीं बल्कि इसने आने वाले समय की, मतलब एक तरह से भविष्यवाणी भी कर दी।
बिल्कुल, ईएम फोस्टर का कालजयी उपन्यास ए पैसेज टू इंडिया।
जी, एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर 1879 से 1970 तक।
वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे बल्कि एक विचारक भी थे।
हाँ, गहरी मानवीय दृष्टि वाले, और वो लंदन का मशहूर ब्लूम्सबरी ग्रुप उसका हिस्सा थे।
अच्छा, वो लेखकों और बुद्धिजीवियों का समूह।
हाँ वही, उनका एक मूल मंत्र था ओनली कनेक्ट, मतलब दिलों को जोड़ना,
समझ बढ़ाना। और उनकी भारत यात्राओं ने इस उपन्यास को वो प्रामाणिकता दी है ना।
बिल्कुल, 1912-13 और फिर 1921 की यात्राएं, जमीनी हकीकत पता चली उन्हें।
ये उपन्यास 1924 में छपा, फॉस्टर का आखिरी और शायद सबसे बेहतरीन काम माना जाता है।
हाँ, इसकी पृष्ठभूमि ब्रिटिश राज का वो दौर है जब स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो रहा था।
पर ये सिर्फ राजनीतिक उपन्यास तो नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये तो संस्कृतियों के टकराव, उपनिवेशवाद के असर, इन सब का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है।
और ये सवाल कि क्या दो अलग दुनियाएं, खासकर शासक और शासित, मिल सकती हैं?
हाँ, क्या सच्ची दोस्ती मुमकिन है ऐसे माहौल में? यही तो मूल सवाल है।
तो आज हम इसी कहानी, इसके किरदारों और इसके गहरे मतलबों पर बात करेंगे।
जरूर।
कहानी हमें ले जाती है चंद्रपुर, ब्रिटिश भारत का एक काल्पनिक शहर।
कैसा शहर है ये?
धूल भरा, तपता हुआ, और हवा में एक अजीब सा तनाव है।
हाँ, अंग्रेज शासकों और स्थानीय हिंदुस्तानियों के बीच वो खींची हुई दीवार।
बिल्कुल, इसी माहौल में इंग्लैंड से दो औरतें आती हैं, मिसेस मूर और अडेला क्वेस्टेड।
मिसेस मूर जो थोड़े उम्रदराज हैं, समझदार, हाँ, और चीजों को महसूस करने वाली, इंट्यूटिव, और अडेला नौजवान है, पढ़ी लिखी,
जिज्ञासु भी।
वो यहाँ के मजिस्ट्रेट रॉनी हिसलॉप से शादी का सोच रही हैं, जो मिसेस मूर के बेटे हैं।
और इन दोनों में एक खास बात है, ये क्लब वाली जिंदगी से हटकर असली हिंदुस्तान देखना चाहती हैं,
लोगों से मिलना चाहती हैं। ये उस जमाने के हिसाब से काफी अलग सोच थी।
हाँ बिल्कुल, और यहीं हमारी मुलाकात होती है डॉक्टर अजीज से,
कहानी के एक बहुत अहम किरदार।
जी, एक नौजवान काबिल भारतीय मुस्लिम डॉक्टर, आकर्षक भी हैं, शायरी के शौकीन,
मुगल वास्तुकला पसंद करते हैं, और दिल में एक उम्मीद है अंग्रेजों से बराबरी की, दोस्ती की।
हाँ, पर थोड़े मतलब जज्बाती भी हैं, कभी बहुत उदार, कभी जरा सी बात पर आहत।
उस वक्त के पढ़े लिखे हिंदुस्तानी की कश्मकश दिखती है उनमें।
बिल्कुल, एक आईना है वो।
तो मिसेस मोर और अडेला की ये असली भारत देखने की इच्छा ही उन्हें दूसरों से अलग करती है।
हाँ, और यहीं से फॉस्टर का वो सवाल शुरू होता है, क्या ये दो दुनियाएं मिल पाएंगी? शुरुआत में तो लगता है कि शायद हाँ, जैसे मिसेस मूर और डॉक्टर अजीज की वो मस्जिद वाली मुलाकात।
हाँ, वो बहुत खूबसूरत पल है, अचानक, बिना किसी औपचारिकता के,
जैसे दो इंसान बस इंसानियत के नाते मिल रहे हों, नस्ल, ओहदा, सब पीछे छूट गया।
बिल्कुल, ओनली कनेक्ट का एक छोटा सा लम्हा।
लेकिन ये लम्हा कितना नाजुक है ये भी जल्दी ही पता चलता है।
हाँ, वो कलेक्टर साहब की ब्रिज पार्टी, मिस्टर टर्टन की।
नाम तो ब्रिज है पुल बनाने वाला, पर कोशिश कैसी थी?
अरे, बड़ी भद्दी सी, ऊपर से थोपी हुई, अंग्रेज एक तरफ, हिंदुस्तानी दूसरी तरफ,
बातचीत में झिझक, बनावटीपन।
वो पार्टी पुल बनाने के बजाय जैसे खाई को और चौड़ा कर देती है, दिखाती है कि ये ऊपरी कोशिशें कितनी खोखली हैं।
सही कहा, लेकिन फिर एक और कोशिश होती है।
हाँ, मिस्टर फील्डिंग की, वो उदारवादी स्कूल प्रिंसिपल।
उन्होंने अपने घर पर चाय पार्टी रखी।
जी, और उसमें अजीज, अडेला, मिसेस मूर, फील्डिंग, प्रोफेसर गॉडबोले
सब थे।
वहाँ माहौल थोड़ा बेहतर था शायद। हाँ, बातचीत ज्यादा खुली हुई थी, थोड़ी अटपटी भी रही होगी, पर
कम से कम संवाद हुआ, अलग अलग नजरिए सामने आए।
बिल्कुल, एक पल को लगा कि हाँ, शायद शायद समझ और दोस्ती हो सकती है।
और इसी उम्मीद में डॉक्टर अजीज एक बड़ा कदम उठाते हैं।
हाँ, वो भव्य न्योता, मार बार गुफाएं घुमाने का,
अंग्रेज मेहमानों के लिए।
उनके लिए ये सिर्फ पिकनिक नहीं थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अपनी मेहमान नवाजी दिखाने का, अपनी संस्कृति का अच्छा पहलू दिखाने का मौका था।
शायद भारत ब्रिटिश दोस्ती की मिसाल कायम करने का सपना।
वो दिल से चाहते थे कि ये कामयाब हो।
हाँ, और यहीं से उपन्यास का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, गुफाएं।
तपती गर्मी में ये यात्रा, माहौल शुरू से ही कुछ अजीब है,
बेचैन करने वाला। और वो मार बार गुफाएं, बहुत पुरानी, अंधेरी,
अंदर से सब एक जैसी, कोई फर्क नहीं।
पहली गुफा में मिसेज मोर के साथ जो होता है,
हाँ, वो भीड़, अंधेरा और वो गूंज, बूम,
वो कोई मामूली गूंज नहीं है। फॉस्टर लिखते हैं कि वो हर आवाज को, हर मतलब को,
प्यार, धर्म, कला, बहादुरी,
सबको जैसे निगल लेती है।
हाँ, सब कुछ सिमट कर बस उस एक खोखली आवाज बूम में बदल जाता है।
ये अनुभव मिसेस मूर को अंदर तक हिला देता है।
उनकी आस्था, दुनिया से मोह, सब खत्म। वो एक तरह के आध्यात्मिक शून्य में पहुंच जाती हैं।
जिंदगी बेमानी लगने लगती है। ये उपन्यास का एक बहुत गहरा दार्शनिक मोड़ है।
बिल्कुल, अस्तित्व पर सवाल।
मिसेस मूर तो वहीं रह जाती हैं, पर अडेला और अजीज आगे बढ़ते हैं,
हाँ, एक गाइड के साथ।
और तभी अडेला, जो अपनी शादी को लेकर पहले से ही उलझन में है,
वो अजीज से वो अटपटा सवाल पूछ लेती है,
हाँ, कि क्या उनकी एक से ज्यादा बीवियां हैं। अजीज को बहुत असहज लगता है,
जैसे निजी जिंदगी में दखल।
हाँ, तो वो झेप कर पल भर के लिए एक दूसरी गुफा में चले जाते हैं,
और जब बाहर आते हैं
तो अडेला गायब है।
फिर थोड़ी देर बाद वो दिखती है पहाड़ी से नीचे भागती हुई, घबराई हुई, बदहवास, और फिर चंद्रपुर पहुंचकर सब कुछ बदल जाता है।
जी, अडेला इल्जाम लगाती है कि अजीज ने गुफा में उस पर हमला करने की कोशिश की,
और डॉक्टर अजीज को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है।
हाँ, ये खबर आग की तरह फैलती है।
ये इल्जाम जैसे एक चिंगारी बन जाता है।
पूरा अंग्रेज समुदाय अडेला के पीछे खड़ा हो जाता है, बिना सोचे समझे।
उनका छुपा हुआ नस्लवाद खुलकर सामने आ जाता है।
हाँ, उनके लिए तो अजीज का हिंदुस्तानी होना ही काफी है उसे गुनहगार मानने के लिए,
और दूसरी तरफ सारे हिंदुस्तानी अजीज के साथ।
ये उनके लिए नस्लीय भेदभाव और अन्याय का प्रतीक बन जाता है। शहर बढ़ जाता है,
और इस बटे हुए माहौल में सिर्फ एक अंग्रेज है जो अलग खड़ा होता है।
हाँ, मिस्टर फील्डिंग। उन्हें यकीन है कि अजीज बेकसूर है।
वो दोस्ती निभाते हैं, अपना सब कुछ दाव पर लगाकर,
अपनी नौकरी, इज्जत, समुदाय, सब कुछ। ये दिखाता है कि अच्छे लोग भी सिस्टम में कैसे अकेले पड़ जाते हैं।
और मिसेस मोर, उनका क्या हुआ?
वो तो जैसे इस सबसे कट ही गई। गुफा के गूंज ने उन्हें तोड़ दिया था।
वो गवाही देने से भी मना कर देती हैं।
हाँ, जैसे अब कुछ मायने ही नहीं रखता उनके लिए। वो इंग्लैंड वापस जाने का फैसला करती हैं।
लेकिन सफर में ही उनकी मौत हो जाती है।
हाँ, समंदर में। पर अजीब बात यह है कि मरने के बाद वो हिंदुस्तानियों के बीच एस्मिस एज़मूर नाम से देवी जैसी बन जाती हैं।
शायद उनकी शुरुआती हमदर्दी की वजह से, या शायद ये भी एक तरह का विरोध था,
कह सकते हैं। फिर मुकदमे का दिन आता है, माहौल तनाव भरा,
नस्ली पक्षपात साफ दिख रहा है।
जब अडेला गवाही के लिए खड़ी होती है तो अचानक उसे शायद कुछ याद आता है,
गुफा का मंजर, वो गूंज, या अपना ही डर और भ्रम।
हाँ, शायद। और फिर एक बहुत हिम्मत भरे पर तकलीफ देह पल में
वो अपना इल्जाम वापस ले लेती हैं।
अजीज बरी हो जाते हैं।
लेकिन क्या ये असल में जीत है?
शायद नहीं। नुकसान तो हो चुका था, दोस्ती की उम्मीद टूट चुकी थी।
अंग्रेज अडेला को बाहर कर देते हैं।
हाँ, क्योंकि उसने अपनों का साथ नहीं दिया। और अजीज, उनका दिल कड़वाहट से भर जाता है।
वो फील्डिंग को छोड़कर किसी अंग्रेज पर भरोसा नहीं कर पाते, अडेला को माफ नहीं करते।
अंग्रेजी इंसाफ का भरम टूट जाता है। उपनिवेशवाद का जहर रिश्तों को बर्बाद कर देता है।
बिल्कुल, व्यक्तिगत भावनाएं सिस्टम के नीचे कुचल जाती हैं। फिर आता है उपन्यास का तीसरा हिस्सा, मंदिर।
समय और जगह दोनों बदल जाते हैं।
हाँ, कई साल बाद, बरसात का मौसम, जगह है मऊ, एक दूर की हिंदू रियासत,
जहाँ ब्रिटिश असर कम है,
माहौल ज्यादा हिंदुस्तानी है।
कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है, भीड़, शोर, रस्में। फॉस्टर इसे मडल कहते हैं।
पश्चिम के ऑर्डर यानी व्यवस्था के उलट भारत की जटिल जीवंतता।
यहाँ हम किरदारों से फिर मिलते हैं, पर वो बदल चुके हैं।
डॉक्टर अजीज अब वहाँ के राजा के चीफ फिजिशियन हैं।
हाँ, पर अंदर से कड़वे हो गए हैं, अंग्रेजों के सख्त खिलाफ राष्ट्रवादी कविताएं लिखते हैं।
और फील्डिंग, वो भी लौट आए हैं इंग्लैंड से।
हाँ, और उन्होंने मिसेस मूर की बेटी स्टेला से शादी कर ली है। अजीज को गलतफहमी थी कि उन्होंने अडेला से शादी की,
जिससे दूरियां और बड़ी होंगी।
हाँ, फिर त्योहार की उथल पुथल में झील में नाव टकराने से
वो दोनों फिर मिलते हैं पानी में गिरकर।
जैसे वो पानी उनकी कड़वाहट कुछ धो देता है, गलतफहमियां दूर होती हैं, सुलह का एक पल आता है।
इसके बाद वो आखिरी बार साथ में घुड़सवारी करते हैं।
पुरानी दोस्ती की याद ताजा होती है। वो मानते हैं कि निजी तौर पर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं।
फिर अजीज कहता है, हाँ, हम दोस्त हो सकते हैं, पर तब
जब तुम अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ दोगे।
फील्डिंग पूछता है, हम अभी दोस्त क्यों नहीं हो सकते?
और तभी उपन्यास का वो मशहूर अंत आता है।
जैसे ही वो साथ आगे बढ़ते हैं, उनके घोड़े अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाते हैं।
हाँ, और कथावाचक लिखता है, लेकिन घोड़े ये नहीं चाहते थे, धरती ये नहीं चाहती थी। आकाश ने कहा नहीं, अभी नहीं, और आकाश ने कहा नहीं, वह नहीं।
इसका मतलब क्या है?
मतलब साफ है, निजी स्नेह हो सकता है, पर उपनिवेशवाद के ढांचे में बराबरी की दोस्ती मुमकिन नहीं है।
यह सिर्फ उनकी मर्जी नहीं, जैसे पूरी कायनात ही इसके खिलाफ है।
हाँ, अभी नहीं, शायद भविष्य की उम्मीद है, पर वहां नहीं, यानी ब्रिटिश राज में ये नामुमकिन है। राजनीतिक सच्चाई रिश्तों पर हावी है।
अगर किरदारों के सफर को दोबारा देखें तो डॉक्टर अजीज का बदलाव बहुत दुखद है।
हाँ, वो उपन्यास का दिल थे, कितने खुले दिल वाले थे शुरू में,
दोस्ती चाहते थे, अंग्रेजी तहजीब से प्रभावित थे,
पर अन्याय ने उन्हें बदल दिया, उनकी मासूमियत छीन ली, वो एक जख्मी शक करने वाले राष्ट्रवादी बन गए।
उनकी कहानी दिखाती है कि पूरा निजाम कैसे एक इंसान की रूह को जहरीला कर सकता है।
बिल्कुल, और फील्डिंग, वो उदारवादी अंग्रेज,
जोड़ने में यकीन रखने वाले,
वो अजीज के लिए खड़े भी हुए।
हाँ, पर क्या वो भारत को पूरी तरह समझ पाए? वो गुफाएं, वो मंदिर का माहौल,
उनका तर्कवादी दिमाग शायद वहां चूक गया, उनकी दोस्ती भी अधूरी रह गई। शायद ये दिखाता है कि सिर्फ अच्छी नीयत काफी नहीं होती।
और ओडेला, वो जानने की कोशिश करती है, उसमें ईमानदारी भी है।
हाँ, पर मिसेज मूर जैसी अंदरूनी समझ नहीं है। गुफा में क्या हुआ, ये एक पहेली है।
क्या वो हमला था या उसका अपना डर, अपना भ्रम,
पता नहीं, पर उसका इल्जाम वापस लेना हिम्मत का काम था। फिर भी वो अकेली रह गई।
शायद वो बुद्धि की सीमाओं का प्रतीक है, जब तक दिल से न समझा जाए।
और मिसेज मूर, जो शुरू में उम्मीद थी,
उनका अंत निराशाजनक है। गुफा की गूंज ने उन्हें तोड़ दिया।
हाँ, वो जैसे शून्य में खो गई, पर एक प्रतीक बनकर जिंदा रहीं, एज मिस एज मोर।
उनका सफर शायद इशारा करता है कि दुनिया में तर्क और आस्था से परे भी कुछ है, शायद एक खालीपन।
अगर मुख्य विषयों को देखें तो पहला तो यही है, उपनिवेशवाद में दोस्ती की नामुमकिनियत।
हाँ, फिर पश्चिम की व्यवस्था, ऑर्डर, और भारत की जटिलता, मडल का टकराव,
अंग्रेजों के अहंकार, नस्लवाद और न्याय के ढोंग की आलोचना,
और साथ ही आध्यात्मिकता, रहस्य और वो शून्यता का सवाल।
हाँ, गुफा की गूंज तो जैसे हर मतलब को निगल जाती है।
उदार मानवतावाद की सीमाएं भी दिखती हैं।
साम्राज्यवाद का मनोवैज्ञानिक असर शासक और शासित दोनों पर, और एडेला के जरिए सच की ताकत।
फोस्टर की लिखने की शैली भी कमाल है।
हाँ, वो कहानी भी कहते हैं और टिप्पणी भी करते चलते हैं।
उपन्यास की तीन हिस्सों में बनावट, मस्जिद, गुफाएं, मंदिर, ये भी एक लात्रा है।
सामाजिक जुड़ाव की कोशिश से अस्तित्व के संकट और फिर एक धुंधली सी आध्यात्मिक संभावना तक।
और प्रतीक कितने सारे हैं।
मारबार गुफाएं, वो अनजाना भारत या अवचेतन या शून्य, वो गूंज,
आसमान जो कभी जोड़ता है कभी अलग करता है,
वो ततैया का जिक्र।
हाँ, शायद हर चीज के जुड़े होने का प्रतीक।
फॉस्टर की भाषा में कटाक्ष भी है, खूबसूरती भी, हंसी और आंसू साथ साथ।
कुछ लाइनें तो याद रह जाती हैं, जैसे वो इंस्पेक्टर अजीज से कहता है, तुम्हें कोरिएंटल हो, हम अलग नस्ल के हैं।
हाँ, ये पूरी नस्लवादी सोच को दिखाता है, इंसान को बस एक लेबल बना देना।
और वो गूंज का वर्णन, बूम, ये ब्रह्मांड की ध्वनि है,
रो कंपा देने वाला, जैसे कायनात ही खाली हो।
और बेशक वो आखिरी पंक्तियां, नहीं, अभी नहीं, नहीं, वहां नहीं,
दोस्ती की ख्वाहिश और कड़वी हकीकत के बीच का फासला, राजनीतिक दबाव निजी रिश्तों को रोक लेते हैं।
तो ये उपन्यास आज भी हमें क्यों इतना प्रभावित करता है? इसके पात्रों की उलझने ये आज क्या मायने रखती हैं?
शायद इसलिए कि ये हमें याद दिलाता है कि भेदभाव और शक रिश्तों को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं,
और ये भी कि एक दूसरे को समझने की कोशिश, वो पुल बनाने की चाह,
हाँ, वो आज भी उतनी ही जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा इस बटी हुई दुनिया में।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।